तारीख 31 मई दिन रविवार, बीबीसी के सभी श्रोताओं को समीर आत्मज मिश्र का नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेना के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, लेकिन मामला है पेचीदा।
मैं जितना मानता था उतना सरल विषय नहीं है, पेचीदा है और 40 साल से उसमें समस्याओं को जोड़ा गया है।
उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में गंगा किनारे खनन पर लगाई रोक। भूकंप की त्रासदी के बाद नेपाल में फिर से खुलने लगे स्कूल।
We have to start. There's no choice because education means future.
खास बातचीत सुनेंगे पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जयराम रमेश से।
हम लोग स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर बड़े बड़े चेहरे प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। हम आज भी हाई कमांड पार्टी की नजरिए से देखा जाता है।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप सोनी से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी रेडियो पर आज एक बार फिर अपने मन की बात कही है। वन रैंक वन पेंशन स्कीम पर जारी विवाद पर मोदी ने कहा कि सरकार इस विवाद के समाधान के रास्ते तलाश रही है। कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार का एक और छलावा बताया है। भारत के वित्त मंत्रालय ने नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी किया है। वित्त मंत्रालय का दावा है कि ITR फॉर्म 1, 2 और 4S को टैक्स देने वालों के लिए आसान बनाया गया है। वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। चीन ने साउथ चाइना सी में टापू बनाने के काम पर रोक लगाने की अमरीका की मांग ठुकरा दी है। अमरीका को लगता है कि चीन इस तरीके से क्षेत्र में अपने प्रभाव को और बढ़ाना चाहता है, लेकिन चीन के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने इसे चीन की संप्रभुता का मामला बताया है। मैं इस बात को दोबारा कहना चाहता हूं कि निर्माण का ये काम चीन की संप्रभुता के दायरे में है, जो वैधानिक, तार्किक और न्याय संगत है। इसका मकसद किसी देश के लिए खतरा या समुद्री परिवहन पर असर डालना नहीं है। चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सुन जियांगो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी फ्रेंच आल्प्स में साइकिल दुर्घटना में घायल हो गए हैं। उनकी जांघ की हड्डी टूट गई है और वे यूरोप से अमरीका लौट रहे हैं। इससे पहले उन्हें जिनेवा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नेपाल में विनाशकारी भूकंप से हुई जबरदस्त तबाही के बाद हजारों स्कूलों के दोबारा खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है। नेपाल में 25 अप्रैल को 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें लगभग 8,000 स्कूलों को भारी नुकसान पहुंचा था। इनमें से कुछ स्कूलों को बांस, लकड़ी और तिरपाल की मदद से अस्थायी तौर पर दोबारा बनाया गया है। मिस्र की राजधानी काहिरा के तहरीर स्क्वायर में पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के शासन से जुड़ी दो विशाल इमारतों को गिराया जा रहा है। इनमें से एक इमारत होस्नी मुबारक के राजनीतिक दल की है, जिसे भंग किया जा चुका है। दूसरी इमारत नौकरशाही के मुख्यालय के रूप में मशहूर थी। लीबिया के पश्चिमी शहर मिसराता में एक आत्मघाती बम हमले में 5 लोग मारे गए हैं। चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। मिसराता में उस स्वघोषित सरकार का मुख्यालय है, जिसका पश्चिमी लीबिया के अधिकतर हिस्से पर नियंत्रण है। जर्मनी के दो प्रभावशाली कारोबारी नेताओं ने कहा है कि रूस को G7 समूह के सम्मेलन में आमंत्रित किया जा सकता है। G7 विश्व के 7 प्रमुख औद्योगिक देशों का समूह है, जिसका अगले महीने जर्मनी में सम्मेलन होने वाला है। रूस ने बीते साल क्राइमिया को अपना हिस्सा बना लिया था, जिसके बाद उसे G7 के सम्मेलन से बाहर कर दिया गया था। दुनिया भर में आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू के बढ़ते सेवन पर चिंता जताई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। गत 26 मई को केंद्र में एनडीए सरकार बने एक साल हो गए। मंत्री जहां एक साल की सरकारी उपलब्धियों को गिनाने में लगे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8वीं बार देश की जनता से रेडियो पर मन की बात की। मन की बात में जहां सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का भरोसा दिया, वहीं आम लोगों से तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। इसमें पशु पक्षियों को पानी देने और योग करने की हिदायत से लेकर किसान चैनल तक की बात शामिल है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने वन रैंक वन पेंशन के आश्वासन को लेकर प्रधानमंत्री की आलोचना की है। सुनिए रोहित जोशी की ये रिपोर्ट।
सरकारी रेडियो चैनल आकाशवाणी से रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वीं बार अपने मन की बात कही। मोदी ने इस बार सेवानिवृत्त सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की सालों पुरानी मांग पर बात की, जिसे लागू करने का वादा उन्होंने चुनावों के दौरान किया था। मोदी ने पिछली कांग्रेस सरकारों पर बीते 40 सालों से इस मसले को उलझाने के आरोप भी लगाए।
मैंने निवृत्त सेना के जवानों के बीच में वादा किया है कि मेरी सरकार वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी और सरकार बनने के बाद भिन्न भिन्न विभाग इस पर काम भी कर रहे हैं। मैं जितना मानता था उतना सरल विषय नहीं है, पेचीदा है और 40 साल से उसमें समस्याओं को जोड़ा गया है। मैंने इसको सरल बनाने की दिशा में, सर्वस्वीकृत बनाने की दिशा में सरकार में बैठे हुए सबको रास्ते खोजने पर लगाया हुआ है।
मोदी के इस मसले को उलझा हुआ बताने और पहले इसकी जानकारी न होने की बात को कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस के अजय माकन ने कहा है कि ऐसा कहकर मोदी एक और छलावा कर रहे हैं।
So isn't it surprising, Mr. Prime Minister, that after one year, one of your...
माकन कह रहे थे कि प्रधानमंत्री महोदय, क्या ये आश्चर्य में डालने वाली बात नहीं है कि वन रैंक वन पेंशन के जिस मुद्दे को पहले आपने सबसे अहम बताया था, अब सत्ता में आने के एक साल पूरा हो जाने के बाद आप ये कह रहे हैं कि ये एक जटिल विषय है और आप पहले इसे नहीं जानते थे, जबकि यूपीए सरकार ने इसे लागू भी किया था और फरवरी 2014 में 500 करोड़ इसके लिए निर्धारित भी किए थे। ये थे कांग्रेस के नेता अजय माकन के शब्द। अपने इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने पर भी बात की। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उनकी मांग का सम्मान किया है। इसके अलावा मोदी ने गर्मी के प्रकोप, स्कूली छात्रों के परिणामों और अपनी सरकार की योजनाओं पर भी अपने इस कार्यक्रम में बात रखी। मोदी ने पिछले दिनों लॉन्च किए गए किसान चैनल पर बात करते हुए इसे खेत खलियान वाली ओपन यूनिवर्सिटी बताया। उधर दूसरी तरफ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी दिल्ली में एक प्रेस वार्ता करते हुए सरकार के पिछले एक साल के कार्यकाल में विदेश नीतियों की उपलब्धियों को बताया। उन्होंने कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और विदेश राज्य मंत्री ने कुल मिलाकर 101 देशों से संपर्क साधकर संवाद बनाया है।
हमने एक आंकड़ा निकाला जो बहुत ही शुभ आंकड़ा निकला है कि हमारा संपर्क और संवाद 101 देशों के साथ हुआ है और ये आंकड़ा केवल प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और विदेश राज्य मंत्री के संपर्क और संवाद का है। इसमें जो बाकी मंत्रालयों के मंत्री अपने अपने काम से विदेश गए हों, किसी देश में गए हों, वो इसमें शामिल नहीं है।
इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं पर बोलते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया है कि मोदी इस साल इसराइल की भी यात्रा करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। रोहित जोशी, BBC, दिल्ली।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर की मन की बात। पूर्व सैनिकों को वन रैंक और वन पेंशन का भरोसा दिया। और अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड में खनन के सबसे प्रमुख ठिकाने हरिद्वार में गंगा नदी पर अब खनन नहीं होगा। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार जिले में गंगा से हर तरह के खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। गंगा में अवैध और वैध हर किस्म के खनन को लेकर हरिद्वार स्थित एक प्रमुख संत संगठन मातृ सदन लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। पूरी रिपोर्ट के साथ देहरादून से शिव जोशी।
हरिद्वार में खनन के काम का रुक जाना पर्यावरणवादियों और खनन विरोधी आंदोलन से जुड़े लोगों की एक बड़ी जीत माना जा रहा है। ये पहला मौका है जब सरकार ने इस तरह का तत्काल प्रभाव वाला आदेश दिया है। गहरे खनन के लिए प्रयुक्त होने वाली पोकलैंड मशीनों को भी खनन क्षेत्रों से हटाने का आदेश जारी किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत,
हमने ये कहा है कि एक बार हम फिर से रिविजिट कर लेते, किसी को जान देने की क्यों जरूरत पड़े, हम एक बार फिर से देख लेते हैं, यदि ड्रेजिंग ठीक नहीं है तो नहीं करेंगे, यदि कहीं गलती हो रही है और यदि कुछ गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए ड्रेजिंग जरूरी है तो फिर उस पर सबको सहमत होना चाहिए।
इस बीच मातृ सदन के प्रमुख स्वामी शिवानंद सरस्वती ने सरकार के फैसले पर उदासीनता का रुख ही अपनाया हुआ है। उनका कहना है कि सिर्फ जीओ से संतोष कैसा, जब तक खनन पर रोक का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो उन्हें संतोष नहीं होगा। इसके अलावा उनकी एक प्रमुख मांग हरिद्वार के डीएम को सस्पेंड करने की भी है।
जब तक हरीश चंद्र सेमवाल जी को सस्पेंड कर उनके हरिद्वार आने से लेकर के अभी तक इनके क्रियाकलापों के लिए उच्च स्तरीय जाँच नहीं बैठाई जाती तो ये जितना माल है ये बाढ़ 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 ये लोग कर रहे हैं तो बाढ़ बाढ़ जितना समस्त गंगा का माल गया हुआ है समस्त स्टोन के सबके जो कि अवैध रूप से इन लोगों ने जमा किया है।
अब सोमवार को शासन से उच्चाधिकारियों का एक दल स्वामी शिवानंद से मिलने हरिद्वार जा रहा है। हरिद्वार डीएम के खिलाफ कार्रवाई पर अड़े शिवानंद और उनके शिष्य आत्मबोधानंद क्या अनशन तोड़ देंगे, ये निर्भर करता है इस बात पर कि अधिकारी उन्हें समझा बुझा पाने में कितना सफल हो पाते हैं। वैसे इस पूरे मामले में मात्र सदन खनन विरोधी आंदोलन की एक सशक्त उपस्थिति बन गया है। 4 साल पहले मात्र सदन के ही एक युवा सन्यासी स्वामी निगमानंद ने 68 दिन का अनशन किया था। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। शिव जोशी, बीबीसी, देहरादून।
रुक करते हैं नेपाल का। पिछले महीने नेपाल में आए भीषण भूकंप ने वहां के पूरे जनजीवन को गहरे से प्रभावित किया था। अभी देश के हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं, लेकिन जनजीवन को फिर से सामान्य करने की कवायदें जारी हैं। भूकंप के बाद देश भर में स्कूली इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा था, जिससे स्कूल भी बंद हो गए थे। लेकिन अब काठमांडू और आसपास के इलाकों में फिर से अस्थायी कक्षाएं बनाकर स्कूलों को दोबारा खोले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुना रहे हैं रोहित जोशी।
काठमांडू के एक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा जानुका बताती हैं कि उन्हें वापस स्कूल जाना अच्छा लग रहा है। जानुका कह रही थी कि इस बीच हमसे कई कहानियां छूट गई हैं। हम स्कूलों में खूब मस्ती करते थे, पर इस हादसे के बाद घरों में अकेले बैठे रहना पड़ता था और वहाँ कुछ भी करने को नहीं था। एक दूसरे छात्र रोशन कहते हैं कि 1 महीने बाद अपने दोस्तों से मिलना उन्हें अच्छा लग रहा है।
एक महीना पछि भेटिदा छ, सबै साथीहरू छन्, रमाइलो भइरहेछ।
अप्रैल में आए भीषण भूकंप के बाद से बंद चल रहे नेपाल के हजारों स्कूल दोबारा खुलने शुरू हुए हैं। 7.8 मैग्नीट्यूड के इस भयंकर भूकंप और फिर उसके बाद आए आफ्टर शॉक्स ने देश भर के कई स्कूलों को तबाह कर दिया था। काठमांडू में भी इस भूकंप में तकरीबन 25,000 से अधिक कक्षाएं क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद से ये स्कूल बंद पड़े थे और इन स्कूलों की पढ़ाई लिखाई भी बिल्कुल ठप पड़ गई थी। लेकिन जिस तरह धीरे धीरे नेपाल का जनजीवन फिर से अपनी गति पकड़ रहा है, ये स्कूल भी फिर से खुलने लगे हैं। इनमें से कई स्कूलों को बांस की खपच्चियों, लकड़ियों और तिरपालों का इस्तेमाल करते हुए अस्थायी तौर पर बनाया जा रहा है। काठमांडू के गैलेक्सी हाई स्कूल की प्रधानाचार्य गीता राणा कहती हैं कि शिक्षा बहुत अहम है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।
We have to start. There's no choice.
गीता राणा कह रही थी कि हमें फिर शुरुआत करनी होगी, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि शिक्षा का मतलब भविष्य है। अगर आप अभी शुरुआत नहीं करेंगे तो इससे आपका ही भविष्य प्रभावित होगा, और इसीलिए फिर से हम स्कूलों को शुरू कर रहे हैं। उधर दूसरी ओर नेपाली सरकार का कहना है कि ये संदेश दिया जाना बहुत जरूरी है कि देश दोबारा से पटरी पर लौट रहा है। नेपाल में आए इस भूकंप में तकरीबन 8,000 से अधिक लोग मारे गए थे और हजारों लोग बेघर हो गए थे।
तो नेपाल में भूकंप की त्रासदी के बाद फिर से खुलने लगे हैं स्कूल। रिपोर्ट सुना रहे थे रोहित जोशी।
भरोसा वही, बस जमाना बदला। राजनीति वही, बस शासक बदला। बीबीसी हिंदी वही, बस प्रोग्राम बदला। बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम अब नए रंग और नए कलेवर में। एक जून से नमस्कार भारत का दूसरा अंक हो जाएगा विश्व भारती और दिन भर का दूसरा अंक कहलाएगा घटना चक्र। सुनिए सुबह 6:30 से 7 तक नमस्कार भारत और 8 से 8:30 विश्व भारती, शाम 7:30 से 8 दिन भर और 9:30 से 10 तक घटना चक्र।
बीबीसी हिंदी से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। मेरा नाम है समीर आत्मज मिश्र और अब वक्त हो चला है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम संडे दिनभर का, जिसमें हम आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं कांग्रेस नेता और पूर्व ग्रामीण विकास और पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश से। जयराम रमेश पर ग्रामीण विकास मंत्री के तौर पर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के मामले में बड़ी जिम्मेदारी थी। हाल ही में उनकी एक किताब लेजिस्लेटिंग फॉर जस्टिस द मेकिंग ऑफ द 2013 लैंड एक्विजिशन लॉ भी छप कर आई है। किताब में उन्होंने विस्तार से इस कानून का जिक्र किया है। बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली से हुई इस बातचीत में सबसे पहले उन्होंने इसी कानून पर बात की।
एक आवाज नहीं थी जो
इस कानून के खिलाफ था, सब लोग चाहते थे। हालांकि आलोचना थी कि ये इतना प्रगतिशील नहीं थी है जितना होना चाहिए, खासतौर से वामपंथियों की आलोचना थी। पर सबकी ये राय थी 1894 का कानून जो अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था उसको हमें उखाड़ कर फेंकना है। और सुषमा स्वराज जी नेता प्रतिपक्ष थी जी, दो संशोधन पेश किए गए उनके ओर से, मैंने उनको वहीं स्वीकारा और शामिल किया। राज्यसभा में विधेयक चला गया, वहाँ रविशंकर प्रसाद और अरुण जेटली जी की ओर से 3 संशोधन आए, उसको भी मैंने शामिल कर दिया। यानी कि जो कानून बना, हालांकि सूत्रधार हम थे, कांग्रेस पार्टी सूत्रधार थी, यूपीए का कार्यकाल में बना, मैं मंत्री था, पर श्रेय सभी पार्टियों को जाता है। 8 महीने के अंदर बिल्कुल विपरीत हो गया।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इसके वजह से आपने जो कानून लाया उसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो रुके पड़े।
एक प्रोजेक्ट भी नहीं रुका है। आपको आश्चर्य होगा कि एक आरटीआई के सवाल के जवाब में इसी सरकार ने जवाब दिया है कि पिछले 25 सालों में सिर्फ मात्र 8% ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो भूमि अधिग्रहण के वजह से रुके पड़े हुए हैं। इस कानून को तो लागू करने का मौका ही नहीं मिला ना, एक प्रोजेक्ट नहीं है। लागू हुआ 1 जनवरी को, चुनाव घोषित किए गए मार्च में
जी।
और बाद में 6 दिन आ गए।
जनाब जी, जी किताब लिखी है आपने, राजनीतिज्ञ हैं और लेखक भी हैं, दोनों में से कौन सा रोल अच्छा लगता है?
देखिए एक चीज, 2014 के चुनाव के बाद मैं बेरोजगार हो गया और ये बहुत भयंकर हमारी जो नतीजा निकला हमारे लिए एक भयंकर नतीजा था। तो मैं सुबह 8 से लेकर रात 10 बजे तक काम करता था, अचानक मेरे पास समय की कोई कमी नहीं रही और मुझे काम करना अच्छा लगता है, तो क्या करूं मैं? तो 2 किताबें आई, एक पर्यावरण के ऊपर और एक भूमि अधिग्रहण के ऊपर।
तो चाहे बेरोजगार नेता हो,
तो हमारे लिए एक रोजगार गारंटी योजना बन गया।
बेरोजगार नेता हो या बेरोजगार जर्नलिस्ट हो, सब किताब लिख सकते हैं मतलब। रमेश जी, कुछ सवाल जो है हमारे पाठकों के हैं,
जो फेसबुक पे सवाल आए हैं, कुछ वो कह रहे हैं कि अर्चना कुमारी हैं, वो पूछ रहे हैं कि जयराम रमेश जी पहले तो ये बताइए कि एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है आपके वाले बिल में और जो अभी की सरकार बिल लाई
है। दो बड़े चीजें हैं। 2013 के कानून में 4 मुख्य स्तंभ थे, एक था अनुमति, दूसरा था सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, तीसरा मुआवजा, चौथा RNR यानी कि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन। संशोधन जो लाए गए हैं पहले 2 में लाए गए हैं, मुआवजा बदला नहीं गया है, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की सुविधाएं बदले नहीं गए हैं, कंसेंट क्लॉज हटाया गया है, निजी कंपनियों के लिए किसानों की अनुमति के बिना अभी भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है, ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर यह है कि अधिग्रहण के पहले सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करना अनिवार्य था 2013 के कानून में, वो उसको हटाया गया है।
कांग्रेस पार्टी से हर बार ये कहते हैं कि हम सोशल मीडिया पे आएंगे।
मैं आपसे इस पर कोई बहस नहीं करूंगा क्योंकि मार्केटिंग के बारे में, सोशल मीडिया के संबंध में, पैकेजिंग के संबंध में, प्रोजेक्शन के बारे में नरेंद्र मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं, हम पीछे रह गए। ये बात सही है, बड़े कुशल कम्युनिकेटर हैं, किस ढंग से वो बोलते हैं, कलाकार आदमी हैं, ड्रामाबाज भी हैं, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, जिस तरीके से वो 56 इंच की छाती प्रोजेक्ट होता है ना, और 2014 का जो हमने हमारी जो बीजेपी की जीत हुई, जो हम हारे बुरी तरीके से हारे, एक कारण यही था। एक कमी हमारे पार्टी में है कि हम लोग स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर बड़े बड़े चेहरे प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। हम आज भी हाई कमांड पार्टी की नजरिए से देखा जाता है। अगर आप 1950 की बात करें, जवाहरलाल नेहरू, कामराज, BC रॉय, प्रताप सिंह कायरों, YB चौहान, गोविंद बल्लभ पंत, नीलम संजीव रेड्डी, मोहनलाल सुखाड़िया,
मगर इसका इल्जाम भी जो इंदिरा गांधी के ऊपर लगाया जाता है कि उन्होंने,
इंदिरा गांधी के समय से शुरू हुआ, चलता रहा और लोकल लीडरशिप हमारी खत्म होती गई। और मुझे अब हमारे सामने बड़ी चुनौती ये है कि जब हम चुनाव लड़ते हैं यूपी में, लोग
या बिहार में,
आपका मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन है? आंध्रा में था राजशेखर रेड्डी, कर्नाटक में है सिद्धरामैया, केरल में है चंडी या रमेश चनितुला, पर तमिलनाडु में है कौन, उड़ीसा में है कौन, मध्य प्रदेश में तो कमी नहीं है, कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, सब लोग हैं। नेताओं की कमी भी बड़ी समस्या हो जाती है।
अच्छा ये बताइए तो बिहार की जब आप बात करें तो बिहार में कोई चेहरा सोचा गया अभी तक? अब चुनाव बिल्कुल आने वाले हैं,
अभी बिहार में हम तो 6-7% है बस पॉपुलर वोट, और आज हम, मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता हूँ कि अगला सरकार हमारे बिहार में हमारा होगा, लोग हंसेंगे मुझ पर।
ये बताइए जयराम रमेश जी, आपने एक बड़ा अच्छा फ्रेज यूज़ किया कि मोदी जादूगर हैं, आपके हिसाब से लगता है कि मोदी साहब के एक साल पूरे हो गया सरकार में, कुछ जो एक परसेप्शन जो बना था, एक पॉलिसी पैरालिसिस की बात बार बार हो रही थी मनमोहन सिंह सरकार के को लेके, सच या गलत वो आप बेहतर बता सकते हैं, वो कहीं ना कहीं मोदी साहब उसको चेंज करने में सक्सेसफुल रहे?
नरेंद्र मोदी जी में अत्यंत ऊर्जा है, परिश्रमी है, मेहनती है, पर जो नतीजे, जिस उम्मीद उन्होंने जगाया था देश भर में, वो नतीजे नहीं निकले हैं, वो उम्मीदें पूरे नहीं हुए हैं। और एक और चीज मैं कहूँ, दो और बातें, नरेंद्र मोदी जी की रणनीति ये रही है कि गवर्नेंस की बल्लेबाजी मैं करूँगा, पर ध्रुवीकरण की गेंदबाजी और कोई करेंगे, ये डबल गेम है।
लेकिन ये भी तो नहीं हो पाया कि पिछले प्रधानमंत्री का कार्यालय इतना दिखता नहीं था, शायद काम करता तो उसके एक जगह से,
पर ये प्रधानमंत्री तो दिखाई ही देते हैं बस, इनका तो सेल्फ नहीं हो गया, सेल्फी हो गया ना। हम लोगों ने प्रोजेक्शन नहीं किया, मैंने मान लिया है, हम लोगों ने मार्केटिंग नहीं की, जो हमारी उपलब्धियां थी उसको हम बेच नहीं पाए, और जो हमने नहीं किया वो नरेंद्र मोदी ने बेच दिया लोगों को। छोटा सा उदाहरण, सब लोग 2G की बात करते हैं, 2014 में हिंदुस्तान में 3 करोड़ भारतवासियों को मोबाइल फोन था, 2014 में जब हम सत्ता छोड़कर गए 90 करोड़। आज जनधन योजना की बात होती है, महात्मा गांधी नरेगा में से 4 साल में 10 करोड़ भारतवासियों को बैंक का खाता खोला गया, पोस्ट ऑफिस में खाता खोला गया। आज तो खाता खोला जा रहा है, जन तो है धन नहीं है, पर नरेगा के माध्यम से हम लोगों ने खाता खोलवाया और खाते में भुगतान था और आज भी है, पर हम
उसी की वजह है कि हम लोग राहुल गांधी को एक नए रूप में देख रहे हैं, एक नए तेवर में, मतलब
बिल्कुल नया रूप है, ये एक नया अवतार है राहुल गांधी जी का,
मतलब कुछ ऐसा नया अवतार है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पप्पू कैन डांस टाइप।
मेरे विचार में असली राहुल गांधी जी अभी निकले हैं, देश का भ्रमण कर रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र,
देश का भ्रमण तो पहले भी कर रहे थे,
इतना नहीं था। अच्छा, देश का भ्रमण माने पहले क्या हुआ करता था, प्लेन में जाओ 3-4 घंटा लोगों से बात करो, प्लेन से वापस निकलो, अभी ट्रेन से जा रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलकर 1-2 दिन वहां रुक रहे हैं।
तो ऐसा कहां आत्मचिंतन करके आया कि इतनी ऊर्जा एकदम,
कहां किया मुझे पता नहीं पर किया तो है 55 दिन या 56 दिन के लिए, 1 56 दिन की छाती और 56 दिन की आत्मचिंतन, उन्होंने किया कहां मुझे पता नहीं पर किया है।
वो आत्मचिंतन के लिए चले गए, उस समय तो ये भी बात हुई कि कुछ माँ बेटे की नाराजगी है और कुछ इस तरह की बात, और दो पावर सेंटर की बात आपके हैं कि एक बड़े नेता ने की, कहीं सा
माँ 70 साल की है, बेटा 45 साल का है, अलग अलग पीढ़ियां के हैं, नजरिए अलग होना वास्तविक है, पर राहुल जी हमेशा, मुझे 1-2 बारी उन्होंने खुद कहा है कि ये मत भूलो कि मैं अध्यक्ष नहीं हूँ।
कब हो रहे हैं अध्यक्ष, कब बनेंगे?
मतलब वो तो जनवरी 2013 में बने उपाध्यक्ष,
नहीं मतलब अध्यक्ष कब बनने जा रहे हैं,
अध्यक्ष कब बनेंगे? 2015 में बनने की उम्मीद है,
मतलब अब कुछ ही महीने बाकी
है, 2015 में बन सकते हैं भाई, अरे ठीक, गाड़ी ठीक चल रही है।
तो आजकल सलाह आप दे रहे हैं उनको, दिग्विजय सिंह कौन?
मैं सलाहकार नहीं हूँ, मैं ना द्रोणाचार्य हूँ ना विदुर हूँ उनका, मैं सिर्फ उनका एक सहयोगी हूँ, सांसद हूँ, बातचीत होती रहती है।
एक चीज बताइए जयराम रमेश जी, अचानक से गप्पू जो है ना, एक नया ट्विटर पे कुछ ट्रेंड चला, पप्पू के जवाब में किसी ने कांग्रेस समर्थक ने तो ये गप्पू नहीं चला दिया क्योंकि राइमिंग
गप्पू फेकू फेकू
नहीं फेकू फेकू के बाद जो नया ट्रेंड है वो गप्पू फेकू था ये नया ट्रेंड है पिछले दो हफ्ते से
पर गप्पू है ही गप तो लगा दे देखिए सुनिए ना उन्होंने क्या कहा एक साल पहले कि काला धन में लाऊंगा वापस देश को और हरेक के खाते में 15 लाख रुपया जमा होगा आपके खाते में जमा हुआ
जी आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल करूंगा आप पहले 2 साल मंत्री रहे पर्यावरण में और उसके बाद ग्रामीण मंत्रालय गए जब आप एक मंत्रालय से दूसरी मंत्रालय गए तो क्या यूं ही वजह थी या कोई
मेरा प्रमोशन
दबाव
मेरा प्रमोशन हुआ
बात हो रही थी उस समय
पर्यावरण मंत्री में मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज था ग्रामीण विकास में मैं पूरा कैबिनेट मंत्री बना
बट कहीं तो ये भी बात आई कि चूंकि पर्यावरण में आप इतना सख्त रवैया अपना रहे थे कि लोग थोड़ा नाराज थे तो
कई लोग खुश थे कि मैं पर्यावरण मंत्रालय में नहीं था ये बात सही है कई लोग खुश थे
जी कुछ लोग खुश थे कौन लोग थे कुछ
अभी छोड़िए ना मोदी जी के दोस्त बहुत से उद्योगपति हैं जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं जो बाहर के देश में जाते हैं और उन देशों में प्रोजेक्ट लगाते हैं वहां के देशों के पर्यावरण के कानून का पालन करते हैं पर हमारे देश में उन्हीं कानून को पालन करने से वो खिचखिचाते हैं
मैं समझ गया आपका इशारा
अजीब सा व्यवहार मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ पर एक पूंजीपति है जो ऑस्ट्रेलिया में बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं आप जान गए होंगे कौन है
तो वो सब लोग जानते हैं
ऑस्ट्रेलिया में 36 शर्तें लगाई गई ऑस्ट्रेलिया की सरकार की ओर से वो मान गए वही शर्त जब मैंने लगाया 4 साल पहले वही 36 शर्त एक प्रोजेक्ट के लिए गुजरात में इन्होंने कहा ये तो उद्योगीकरण को
रोका जा रहा है
धोखा है उद्योगीकरण रोक जाएगा
जयराम अमित साहब आप आए बीबीसी हिंदी स्टूडियो में हमारे पाठकों के सवालों का जवाब दिया हमारे सवालों का जवाब दिया बहुत बहुत शुक्रिया
तो ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश उनसे बात कर रहे थे फैसल मोहम्मद अली आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर लिखिएगा और अब चलते चलते एक नज़र डाल लेते हैं आज की खेल की गतिविधियों पर हमारे सामने स्टूडियो में हैं आदेश कुमार गुप्त जी आदेश जी बहुत संक्षेप में आप बताएं क्या चला आज क्या हुआ आज खेल में
जी देखिए समीर जी फिलहाल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे गद्दाफी स्टेडियम में आमने सामने जहाँ तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है और थोड़ी देर पहले पाकिस्तान का स्कोर 7 विकेट खोकर 280 रन था और इसके अलावा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच लीड्स में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है जहां आज मैच के तीसरे दिन थोड़ी देर पहले
बड़ा रोचक स्कोर
जी हां बहुत ही अजीबोगरीब इत्तेफाक देखने को मिला जब इंग्लैंड की पहली पारी 350 रन के स्कोर पर समाप्त हुई जबकि इससे पहले न्यूजीलैंड की पहली पारी भी 350 रन के स्कोर पर समाप्त हुई थी और न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर थोड़ी देर पहले 118 रन बना लिए थे उधर ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग का फाइनल तीसरी वरीयता हासिल स्पेन की कैरोलिना मरीन ने अपने नाम किया जबकि पुरुष एकल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल चीन के लॉन्गचेन ने डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को 21-12, 14-21, 21-18 से हराया और जहां तक फ्रेंच ओपन के मुकाबलों की बात है तो आज स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड के ही स्टेन वावरिंका और फ्रांस के जो विल्फ्रेंड सोंगा थॉमस बर्डिच का सामना करेंगे इसके अलावा महिला एकल वर्ग में मारिया शारापोवा के बीच भी जिस तरह का मुकाबला रहेगा लूसी साफारोवा के साथ वो भिड़ेंगी अगले कार्यक्रम में विस्तार से बताएंगे
बहुत बहुत धन्यवाद आदेश जी इस खेल की जानकारी के लिए और अब कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार
बीबीसी समाचार भारतीय सेना में वन रैंक वन पेंशन स्कीम पर जारी विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार इस विवाद के समाधान के रास्ते तलाश रही है कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार का एक और छलावा बताया है चीन ने साउथ चाइना सी में टापू बनाने के काम पर रोक लगाने की अमेरिका की मांग ठुकरा दी है अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी फ्रेंच आल्प्स में साइकिल दुर्घटना में घायल हो गए हैं उनकी जांघ की हड्डी टूट गई है नेपाल में विनाशकारी भूकंप से हुई जबरदस्त तबाही के बाद हजारों स्कूलों के दोबारा खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है बीबीसी समाचार
तो दिन भर के इस अंक में फिलहाल इतना ही कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया कुणाल शर्मा ने 9:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम दिन भर के दूसरे अंक में फिलहाल समीरात्मज मिश्र को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति नमस्कार